जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चैतामृत मध्य लीला अध्याय संख्या 4। अध्याय का शीर्षक है श्री माधवेन्द्रपुरी पाद की भक्ति और श्लोक संख्या 125 सीपीआर जो है वो अभी वहां बोर्ड पे है। ग्रामेर शून्य हाटे बोशी कर कीर्तन एथा पुजारी करैलो ठाकुर शयन ग्रामेर शून्य हाटे बोशी कर कीर्तन एथा पुजारी करैलो ठाकुर शयन ग्राम शून्य हाटे बसी करे कीर्तन एथा पुजाई करैलो ठाकुर शयन। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की माधवेंद्रपुरी मंदिर से बाहर जाकर गांव के बाजार में बैठ गए जो निर्जन था। वे वहां बैठकर कीर्तन करने लगे। इसी बीच मंदिर के पुजारी ने अर्चा विग्रह को शयन करा दिया। तात्पर्य, यद्यपि माधवेंद्रपुरी की रुचि खाने तथा सोने में नहीं थी, किंतु महामंत्र का कीर्तन करने में उनकी रुचि इतनी तीव्र थी कि मानव वे परमंश ना होकर महत्वाकांक्षी अध्यात्मवादी हों। इसका अर्थ यह हुआ कि परमंश अवस्था में भी कीर्तन करना नहीं छोड़ा जा सकता। हरिदास ठाकुर तथा अन्य गोस्वामी जपमाला की निश्चित संख्या का जप करने में लगे रहते थे। अतएव जपमाला में कीर्तन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, भले ही वह परमंश क्यों ना हो। यह कीर्तन मंदिर के भीतर या बाहर कहीं भी हो सकता है। माधवेंद्रपुरी तो निर्जन बाजार में ही बैठकर कीर्तन करने लगे। जैसा कि श्रीनिवास आचार्य आने षड गोस्वामी की स्तुति में कहा है, नाम गान नति भी। एक परमंश कीर्तन करने तथा भगवत सेवा करने में सदैव लगा रहता है। भगवान का नाम कीर्तन करना तथा उनकी सेवा में लगे रहना एक सा है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में के सातवें स्कंद के पांचवें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है, भक्ति 9 प्रकार की होती है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम सख्यम तथा आत्मनिवेदनम। यद्यपि प्रत्येक विधि भिन्न प्रतीत होती है, किंतु परम पद पर स्थित हो जाने पर ये एक समान दिखती है। ध्यान से सुनिएगा। उदाहरणार्थ श्रवण करना कीर्तन के ही समान है और स्मरण कीर्तन या श्रवण के ही तुल्य है। इसी प्रकार अर्चविका की पूजा में लगना कीर्तन श्रवण या स्मरण के ही तुल्य है। भक्त से उम्मीद की जाती है कि वे भक्ति की 9 विधियों को स्वीकार करें, किंतु यदि इनमें से एक भी विधि पूरी हो ले तो उसे भी उसे तब भी सर्वोच्च पद परमंश मिल सकता है और वह भगवत धाम को जा सकता है।
लिखा स्वर्ग धाम को जा सकता है।
तो महत्वपूर्ण प्रसंग तो सबको अवगत ही होंगे सब लोग, पर तात्पर्य जो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। तो यद्यपि प्रसंग जो है वो कई बार बहुचर्चित प्रसंग है, बहुत बार चर्चा हो चुकी है, तो पर ये तात्पर्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है। कई महत्वपूर्ण बातें हैं इसके अंदर। यहां पर जो है जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अपने आप में ही थोड़ा सा विरोधास्पद लग सकता है हमें, शुरुआत ही ऐसी है, बड़ी अजीब सी शुरुआत है, क्योंकि यहां पर ऐसे बता रहे हैं कि महामंत्र कीर्तन करने में इसकी इतनी रुचि इतनी तीव्र होनी चाहिए मानो कि परमंश न होकर महत्वाकांक्षी आध्यात्मवादी हो, यानी कि एस्पायरिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट, यानी कि जिस बेचारे की अभी जिसको अभी भी हाँ चाहिए, अभी जिसका पूरा नहीं हुआ है, जिसका अभी कोटा पूरा नहीं हुआ, जिसको अभी जो है एस्पायरिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट, यानी कि जो अभी आध्यात्मिक सिद्धि की ओर उन्नत हो रहा हो, तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से प्रभुपाद बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मानो कि एक सिद्ध व्यक्ति के जप की तीव्रता, या ऐसा कह लीजिए एक साधक की तीव्रता जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो आकांक्षी है उसकी तीव्रता सिद्ध व्यक्ति की जप की तीव्रता से भी तेज होनी चाहिए। बड़ी अजीब सी बात है। श्री श्रीराधराधिकरण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो बहुत ही अपने आप में विचित्र बात है कि आध्यात्मिक साधक की तीव्रता जो है सिद्ध व्यक्ति की तीव्रता से ज्यादा होनी चाहिए। सिद्ध का मतलब होता है जो मुक्त हो गया, खत्म हो जाए, जो भगवान के साथ रहता है, भगवान का नित्य पार्षद है, तो उससे भी तेज जो है साधक की तीव्रता होनी चाहिए। तो अपने आप में बड़ा बड़ी विचित्र बात है। और यहां पर आगे हालांकि ये बता रहे हैं, यहां पे उदाहरणार्थ जो कि प्यारी बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, ग्रामीण शून्य हाटे, तो कि जो है माधवेंद्रपुरी बाद जो है बाजार जो खाली था वहां पे बैठ के जो है शून्य बाजार खाली बाजार में जो है बैठ के जो है जप करते, मतलब कहीं पे भी जप किया जा सकता है, बात सही है, पर बाजार भरा हुआ नहीं था, फिर भाजी सर भर्रे बाजार में निकल जाए जप करने के लिए, कि माधवेंद्रपुरी बाद भी जो है मार्केट में जप करते, तो मार्केट खाली था उस टाइम पे, भरा हुआ नहीं था। क्या राजौरी गार्डन मार्केट तो खाली मार्केट है, ठीक है 10 बजे से पहले। पर कहने का मतलब है कि जगह जो है वो यद्यपि महत्वपूर्ण है, और फिर भी कई जगह पे जो है दोनों चीजें, तो बैलेंस समझने की जरूरत है इसमें, कि एक तरह जहां बताया गया है तत्तार्पित स्मरण नियमित स्मरण काल है, तो कोई सी जगह के किसी जगह का मोहताज नहीं है हरिनाम, और फिर भी साधक जो है जप करने समय जो है कई चीजों का ध्यान भी रखता है, दोनों चीजें साथ साथ होती है। तो और यहां पर जैसे बता रहे हैं भगवान का नाम बहुत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय बताया गया है, भगवान का नाम कीर्तन करना तथा उनकी सेवा में लगे रहना एक सा है। तो कोई जो तो ये इसी चीज से जो है जो नौ सीखियों के अंदर जो एक विरोधाभास होता है, कंट्रोवर्सी होती है, विवाद जो अंदर रहता है कि क्या श्रेष्ठ है, जप करना ज्यादा श्रेष्ठ है कि सेवा करना ज्यादा श्रेष्ठ है, और जब ऐसा ही नहीं है, यही चीज जो है आगे भी चलती रहती है दिमाग में, तो नौ सिखियों के अंदर का ये आर्गुमेंट होता है कि अल्टीमेटली कि भजन आनंद ही श्रेष्ठ है कि गोष्ठी आनंद ही श्रेष्ठ है, गोष्ठी आनंद जो बेचारा ज्यादा सेवा करता है, भजन आनंद ज्यादा जप करता है, तो यहां पे बता रहे हैं दोनों एक से हैं, एक से यानी जप करना, कीर्तन करना और सेवा करना एक सा है। तो भगवान के लिए जो है एक सी। फिर भी यहां पर भक्ति के नौ अंगों के विषय में जो है चर्चा प्रभुपाद ने की है, इसलिए तात्पर्य जो है बड़ा महत्वपूर्ण तात्पर्य है। तो यहां बता रहे हैं कि ऑल्दो इस सॉरी माफ कीजिए, यद्यपि यद्यपि प्रत्येक विधि भिन्न प्रतीत होती है, किंतु परम पद पर स्थित हो जाने पर ये एक समान दिखती है। यानी कि परम पद पर स्थित हो जाने पर, उससे पहले जो है भेद होता जरूर है, इसीलिए हर चीज को अलग अलग से करी जाती है, सारे सभी अंगों का पालन करना आवश्यक है, परंतु फिर भी परम पद पर स्थित होने जाने पर जो है एक समान दिखती है। क्योंकि यहां पर बता रहे कि ये परम पद का है का उदाहरण दिया गया, परम पद का उदाहरण दिया गया। श्रवण करता कीर्तन के ही समान है और स्मरण करना कीर्तन या श्रवण के तुल्य। तो अपने आप में जो है ये अदरवाइज बहुत ही इसको गलत समझा जा सकता है, क्योंकि यहां पे जैसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं, फॉर इंस्टांस हियरिंग इज एज गुड एज चैंटिंग एंड रिमेंबरिंग इज एज गुड एज हियरिंग एंड और चैंटिंग अगेन। स्मरण करना श्रवण कीर्तन के समान है, तो कोई सोचे कि मैं स्मरण नहीं करता हूं तो मैं तो माला जपने की जरूरत नहीं है, श्रवण करने की जरूरत नहीं है। या कोई कहता है कि मैं सिर्फ जो है श्रवण ही करता हूं बैठ के, श्रवण से सब कुछ हो जाएगा, परीक्षित महाराज तर गए तो मेरी क्या बात है ना, तो फिर ठीक है तो मैं श्रवण ही करता हूं, तो मेरे को कीर्तन करने की जरूरत नहीं। तो ये परमहंस अवस्था के लिए बोला गया, परमहंस अवस्था में जो है सारी चीजें एक समान होती, परंतु एक साधक को जो है सारी चीजें, देखिए लिखा है डिवोटी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट ऑल नाइन प्रोसेसेस, उससे ये आशा की जाती है, उससे उम्मीद की जाती है कि जो साधक जो है वो अपने आप को सीधा परमहंस ना समझ ले, परीक्षित महाराज ना समझ ले कि मैं कई बार पहले, कई बार भागवतम कक्षा में कई बार बहुत पहले मुझे याद है कि काफी जोर से चर्चा चलती थी, श्रवण करने से नहीं होगा, श्रवण करने से होगा, होगा पर परमहंस के लिए होगा। श्रवण की कई दशाएं हैं, इसीलिए पांच पांच दशाएं बताई गई हैं श्रवण की, तो इसलिए श्रवण के स्मरण की भी दशाएं बताई गई, तो दशाएं इसलिए बताई गई। तो अभी जो है हमारा श्रवण जो है उसके साथ जो है वो श्रवण बेसिकली श्रवण से ही होता क्या है, अक्सर श्रवण से अक्सर जो है संबंध ज्ञान की प्राप्ति होती है, नॉलेज की प्राप्ति होती है। तो उसके बाद जो है कीर्तन करना जो है उसको ज्यादा अभिधेय कह सकते हैं आप, तो वो प्रैक्टिस होते ज्यादा। तो नॉलेज जो ज्ञान जो है, ज्ञान को कार्यान्वित करने के बाद ही वो विज्ञान बन सकता है, उससे हम कोई उम्मीद कर सकते हैं। तो इसीलिए उसकी इन चीजों की जरूरत है एज एन श्रवण के लिए। फिर बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया आपके पास, अब उसके बाद क्या, उसके बाद अगर वो कार्यान्वित नहीं कर रहे तो वो श्रवण कुछ दिनों बाद बंद हो जाता है, फिर उल्टा चलता है श्रवण। हमने देखा है ज्यादातर लोग जो श्रवण ही करते हैं सिर्फ, और जिनका कोई प्रैक्टिकल सर्विस वगैरह नहीं है, वो मोस्ट डेंजरस होते हैं। बुरा मत मानिएगा, बुरा ये ऑब्जर्वेशन है, कई मतलब इस्कॉन में देखा गया है, ये कम से कम बाहर का मुझे नहीं मालूम, इस्कॉन में देखा गया पुराने पुराने श्रवण श्रोता 15 साल 20 साल से सुन रहे, वो कुछ करते नहीं, फिर वो कुछ करने लायक रहते भी नहीं है, वो सिर्फ इसी लायक रहते हैं बस। क्योंकि जब सुनने के बाद जब करना होता है उस वक्त नहीं करता तो आदमी ढीठ हो जाता है, फिर वो कुछ अच्छा नहीं लगता उसको। सो श्रवण इज नॉट ए लेजी मैन्स जॉब, जो कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं करना चाहता उसके लिए श्रवण, उसके लिए कुछ नहीं है फिर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको बहुत लाइट ही नहीं लेना चाहिए कि इट इज नॉट, कई बार इसको प्रारंभिक अवस्था के लिए जो ही बोला जाता है कि बहुत आसान है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। हियरिंग हैज टू बी वेरी प्रोएक्टिव, एटलीस्ट एक्टिव, हियरिंग के ये भक्ति विनोद ठाकुर कुछ चैतन्य शिक्षा अमृत और जैव धर्म में जो है कुछ चीजें बता रहे हैं, तो वो है कुछ अंग जो मेरे को समझ आए। श्रवण क्या है, ऊपर ये देखिए सबसे ऊपर, ये श्रवण के एक्टिव पार्ट है, पहला प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चन इज ऑल्सो डिवोशनल सर्विस। अच्छा, सवाल पूछना भक्ति होती है क्या, क्या क्या भक्ति होती है, माला करना भक्ति होती है, ریڈنگ چلو بھکتی ہوتی ہے، چلو پوجا کر لیا بھکتی ہوتی ہے، سوال پوچھنے بھکتی ہوتی ہے. روپ گوسوامی کے حساب سے پانچواں آئٹم ہے بھکتی رسامرت سندھوں کا، بھکتی کے 64 انگوں میں سے پانچواں یہی ہے کوشچن پوچھنا. ویری امپورٹنٹ وہ ہے پارٹ، پرشن پوچھنا، سوال پوچھنا. یہ پریشت مہاراج جب سوال پوچھتے ٹائم پاس تھوڑی کرتے اشوک دیو گوسوامی کا، یا ارجن جو ہے وہاں پہ کیا کہتے ہیں یدھ کے کھیتر میں جو ٹائم پاس کرتے بھگوان سے کرشن سوال پوچھ کے، 100% ڈیووشن سروس ہے. تو یہ بہت مہتوپورن انگ ہے. مطلب یہ اکثر دیکھا جاتا ہے، مطلب برا مت مانیے گا کہ پرشن کوئی نہیں پوچھتا، پرشن پوچھنا دور کی بات ہے، جب پرشن پوچھ رہے ہوتے ہیں اٹھ جاتے ہیں وہاں سے. پراپت بولتے ہیں آسکنگ کوشچن از سائن آف انٹیلیجنس، پرشن پوچھنا بدھیمتا کا لکشن ہے. جو سب سے زیادہ بدھیمان ہوتے ہیں وہ پرشن پوچھنا دور کی، وہ سن بھی نہیں سکتے دوسرے کا پرشن. کئی بار دیکھا جاتا ہے جو سب سے مہتوپورن حصہ ہوتا ہے، ابھی تو جا کے موقع ملا ہے کہ آپ نے کیا شرمن کیا ہے، اب جو ہے آپ اپنے شرمن کو کاریانوت کر سکتے پرشن پوچھ کے سب سے پہلے. جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کئی بار بڑے بڑے مہاراج لوگ آتے ہیں، وہ بےچارے سال میں ایک بار آئے ہوتے، دو بار آئے ہوتے ہیں، وہ آگے پوچھ بولتے ہیں اچھا تو یہی اس کے ساتھ یہیں پہ جو ہے ککشا سماپت ہوتی ہے، ککشا سماپت ہوتی ہے ختم، اب کسی کا کوئی پرشن کوئی پرشن نہیں ہے، کچھ پوچھنا شیش نہیں رہے گا، سب سمجھ آ گیا. ارے پرشن پوچھ نہیں سکتے تو سن تو سکتے ہیں دوسرا کوشچن، یہ بھکتی کا انگ ہے، بہت مہتوپورن انگ ہے. اس کے پیسے نہیں لگتے پرشن پوچھنے کے اس کام کے اندر، پر بہمولیا اتر ملتے ہیں، بیش قیمتی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو کم سے کم ریگولرلی بھاگوتم سننے آتے ہیں تو فائدہ کیا ان کے سالوں سال سننے کا، اگر وہ پرشن بھی نہیں پوچھ سکتے، ابھی یہیں تک بھی نہیں پہنچے. دے شوڈ آلویز، یہ کوشچن از ویری امپورٹنٹ، اس کو شکشا کے روپ میں لیجیے، کیونکہ بھاگوتم ککشا جو ہے اکثر بھاگوتم ککشا میں سمبندھ گیان کی چرچا ہوتی ہے، ابھی دے اتنا نہیں چرچا ہوتی ہے، ہوتی ہے پر کم، بیکاز بھاگوتم کلاسز یوزلی پرنسپلس بتانے کے لیے جو کہ سمبندھ سوچک ہوتے ہیں، نالج بیسڈ ہوتے ہیں. بھاگوتم کلاس از ناٹ جنرلی ویری ایپلیکیشن بیسڈ، نالج بیسڈ. نالج بیس تیار کرنے کے بعد وہ ایپلیکیشن میں اتارنے کی امید کی جاتی، تو وہ ایپلیکیشن تبھی ہو سکتا ہے جب کوئی پرشن پوچھے، ہیئرنگ ایکٹیو ہیئرنگ کا پارٹ ہے. اب آپ سوچیں نا، جس آدمی کو کلاس میں بیٹھ کے نہ پرشن پوچھنے نہ اس نے نوٹس بنانے، تو کیا کرنا، سونا ہی تو ہے پھر اس نے، اور کیا کرنا، اس کے لیے یہی رہ جائے گا پھر، تو اس لیے نیند آتی ہے کیونکہ اس کو کچھ کرنا نہیں اس وقت بیٹھ کے، نہ اس نے پرشن پوچھنے نہ اس نے نوٹس بنانے، بالکل شوتی در کی طرح کلاس میں آتے. تو یہ دوسری چیز ہے، نوٹس کرنا، نوٹس بنانے، چاہے کتنے بھی پرانے ہو جائیں، کتنے بھی پرانے ہو جائیں. کرشن داس کبیراج گوسوامی 60 سال کی عمر کے تھے، اس سے زیادہ کے تب نوٹس بنایا کرتے تھے، 60 سال کی عمر کے تب بھی نوٹس بناتے، جب بھی 90 سال کی عمر میں چیتن چتامرت لکھی ہے انہوں نے، ایسے نہیں لکھ دی چیتن چتامرت، 60 سال کی عمر کے تھے. رگھوناتھ داس گوسوامی تقریباً 40 سال رج میں آئے، تو اس ٹائم کرشن داس کبیراج رگھوناتھ داس گوسوامی کے ٹائم پہ انہوں نے سی سی لکھی، وہ تب 90 سال کے تھے، اس کا مطلب 30 سال سے سن رہے تھے ان سے. تو یہ بہت مہتوپورن ہے، یہ سب کرے بھی نا کوئی شرون نہیں ہوتا کسی کا بھی، برا مت مانیے، بھکتی ٹھاکر بتانے صاف، یہ چیتن شکشا میں کھول کے بڑھ سکتے ہیں، جے دھن کھول کے بڑھ سکتے ہیں. اسے شرون الٹا بلاک ہو جاتا ہے سر. یہ ایکٹیو بہت ہی ایکٹیو پارٹس ہیں اس کے، شرون کے لیے کنڈیشن کرنا اپنے آپ کو، نہیں تو دیکھا جاتا ہے، یہ ابھی ہم نے دیکھا ہے، ابھی بالکل حال ہی میں دیکھا. یہ پرابھات کے جو پورا پروسیس ہے یہ شرمن کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے، جیسے ککشا شروع ہوتی ہے رادھا مادھو سے، وہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی، اٹس این آئس بریکر. جب آدمی باہر سے آتا تو کیا ہوتا ہے، دماغ کوئی پتا نہیں کہاں چل رہا ہوتا ہے دماغ، ہم نے کئی بار نوٹ کیا، جب بھرا کلاس بھری ہوئی ہے پتا نہیں بندہ ایسے، وہ پتا نہیں کہاں ہے اس وقت، بالکل ساتویں آسمان پہ چل رہے ہیں. اب ہم ان سے پوچھے کلاس مطلب کہاں سے ہیں، بولے ہم شالیمار باغ سے ہیں، آپ کہاں سے ہیں، ہم دوارکا سے ہیں. ارے بھیا جب آئی گئے ہو 8-10 کلومیٹر دھکے کھا کے، اب سنی لو اس لیے آئے ہو پھر ٹھیک سے، وہ یہیں پہ بیٹھ کے ساری دنیا کے باتیں، جو گھر پہ بیٹھ کے سوچ لے دنیا کی باتیں، وہاں زیادہ سمجھ آئے گی. تو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے ٹائم سے پہنچتے ہیں، وہ سب ختم ہو چکے، اس کو کچھ نہیں سنائی دے رہا، کیونکہ اس کی کنڈیشننگ، ہی ہیز ٹو بی کنڈیشن ٹو ہیئر، ہیز ٹو بی کنڈیشن ٹو ہیئر. تو اس لیے شروع میں رادھا مادھو کیرتن ہوتا ہے، اس میں تالیاں بجاتے ہیں، لوگ گاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے آدمی پرانی کنڈیشننگ، ابھی کیا ہونے والا ہے، ابھی کسی کا ابھی بل جمع کرانا ہے، ابھی لون دینا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، سیوائیں کرنی ہیں، ابھی بہت سارا کام کرنا ہے، ابھی کیرتن میں جانا ہے، یہ وہ. تو وہ پوری پلاننگ چلی ہوئی ہے، ٹک 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 ٹک، 9 بجے ختم. چلو، تو اس کے وجہ سے جو ہے یہ پراپر پروسیس بنایا، کیونکہ پراپر کو معلوم ہے کہ یہ ایسے، یہ کوئی پروسیس نہیں ہے. شکدیو گوسوامی نے پہلے رادھا مادھو نہیں گایا تھا، شکدیو گوسوامی نے نہیں گایا تھا رادھا مادھو، فرق سے دیکھا جاتا. تو پک اینڈ چوز ہوتا ہے اس میں، ہم سوچیں گے کہ کس وقت کیا امپورٹنٹ ہے، آپ سوچیں گے کیا امپورٹنٹ ہے شرون کے لیے. تو یہ ضروری ہے، ہو سکتا ہے یہ چیزیں بہت کڑوی لگے، پر یہ چیزیں سچ ہیں، یہ ڈیلی آبزرونس ہے، ڈیلی آبزرونس ہے ان چیزوں کی، اور اس سے فرق پڑتا ہے. اسی لیے دیکھا جاتا ہے، ابھی ہم لوگوں نے ریسنٹلی ٹیسٹ لیا تھا کچھ ڈیووٹیز کا، وہ بھکت جو کہ برامد مانی کے 4 سال جو ہے اس قوم کے اندر ہے منیمم، ان میں سے کسی بھی ایک یا دو بھکت کو چھوڑ کے 108 بھکتوں کا ٹیسٹ لیا تھا، اس میں سے 5 یا 6 کو چھوڑ کے کسی کو یہ نہیں پتا رادھا مادھو کس نے لکھا ہے. کیوں نہیں پتا؟ اس لیے پتا، کبھی سنتے ہی نہیں آ کے. کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہی نہیں پتا رادھا مادھو بھجن کس نے لکھا. ابھی ہم امبیرس نہیں کرنا چاہیں گے، ابھی آڈینس میں پوچھیں گے تو بہتوں کو نہیں پتا ہوگا. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ وہ بھجن کرپا نہیں کرے گی، وہ آچاریہ کرپا نہیں کریں گے. ہمارے پک اینڈ چوز سے تھوڑی ہو جائے گی کہ میں لیکچر سننے جانا ہے. ارے کمال ہے، ہماری ہیئرنگ اتنی ڈیلیٹڈ ہوتی ہے. ابھی کیا چل رہا ہے؟ رادھا مادھو چل رہا ہے. ابھی کیا چل رہا ہے؟ شوک چل رہا ہے. اچھا اچھا، ابھی کیا تاتپر ہو گیا؟ ابھی لیکچر شروع ہے. ابھی یہاں پہ ویاس سچ میں بیٹھنے والا جو وقت ہے، وہ پربھا سے زیادہ بول لے گا کیا؟ آپ شکھ دیو گوسوامی کا بولا ہوا شلوک چھوڑ دیا، ویاس دیو کا لکھا ہوا شلوک چھوڑ دیا آپ نے، پربھات کا لکھا ہوا تاتپر انوے پوروتی آچاروں کی ٹیکا کے بیس پر جو انوے دیا گیا ہے، ورڈ میننگ جو ہے وہ چھوڑ دیا آپ نے، پربھات کا تاتپر چھوڑ دیا. آپ کا بچا کیا بھاگوتم کا؟ اب آپ لیکچر سننے آئے ہو، کس کو سننے آئے ہو؟ جو وقت ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا پربھات کے تاتپر کا خلاصہ دے سکتا ہے، بس. ہیئرنگ ہو گئی میں کئی بار، یہ ایسی مانسکتا تو کیا یہی سمجھ آتا ہے. پھر اس کے بعد ایسے ہی پرشن ہوتے ہیں. بھاگوتم روز سننے آتے ہیں، کتنے شلوک ہے بھاگوتم میں؟ 1800. یہی ہوتا ہے، اس لیے ہوگا، یہ نیچرل ہے یہ چیز ہونا، کیونکہ یہ گرنتھ کرپانی گرنتھ تو سنا ہی نہیں آپ نے، تو کیا کرپا کرے گی یہ گرنتھ آپ پہ؟ کتنے سال ہو گئے؟ 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، پھر بولتے ہیں میں آنند کیوں نہیں آ رہا، کچھ مل نہیں رہا، اس کان میں کچھ نہیں ہے، چلو رادھا کنڈ چلتے. پھر یہی ہوگا، بس کنڈ کنڈ کے برہمن ہوں گے، بس اور کچھ نہیں ہوں گے. برہمت مانی بس، یہ کڑوی سچائیاں ہیں، کڑوی سچائیاں ہیں. اس کے بعد کئی بار لوگوں کو لگتا ہے شرون کر رہے ہیں، ارے مان لیجیے خالی کلاس ہے، کئی بار دیکھتے ہیں ادھر بیٹھا ہوا بند، ادھر زیادہ تیز آواز آتی ہے. یہ ایٹیٹیوڈ ساری چیزیں، کئی بار کہتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا تو بھکتی نہیں ہوگی. ارے نالج نہیں ہوگا تو ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا. بھکتی کی شروعات پریوجن سے نہیں ہوتی ہے، سمبندھ سے ہوتی ہے. سمبندھ از نالج، ایٹیٹیوڈ از پریوجن، ایٹیٹیوڈ از اے ویلو. بھاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ بھاؤ کہاں سے آئے گا؟ آپ کا کچھ جان نہیں ہے، اندھکار میں رہ کے بھاؤ آئے گا آپ کو؟ کئی بھکتوں کو ایسا لگتا بھی ہے کہ ہمارے بھکت بہت سرنڈرڈ ہیں، کب یہ ہیں وہ ہیں، جان کیا ہے؟ بگ زیرو. وہ سرنڈر نہیں ہوتا، سینٹیمنٹ ہوتا ہے، وہ بھاوکتا ہوتی ہے پوری، بعد میں پتا چلتا ہے. تو یہ بیس پہلے یہ ہیئرنگ سے شروع ہوتا ہے، اور یہ جب تک یہ چیز ہیئرنگ جب تک اس پرکار سے ایکٹیو نہیں ہوگا، وہ کبھی ہیئرنگ نہیں بنے گی. دیٹ ہیز ٹو بی ایکٹیو ہیئرنگ، ہیز بی کوشچنز، ہیز ٹو بی نوٹس، کامنٹس. प्रभुपाद ने इसलिए सिस्टम बनाया इसलिए कि इसके बाद प्रश्न उत्तर रखें। प्रभुपाद से इतने सारे बुक्स प्रश्नोत्तर पे आता रहता है, पूर्ण प्रश्न, पूर्ण उत्तर, आध्यात्मिकता, 21वीं सदी, जीवन का स्रोत, जीवन, ये सारे प्रश्नोत्तर इतने क्या है। जितना बहुत जरूरी है एक्चुअली। उसके बाद आता है जैसे कीर्तन, तो कीर्तन के 5 अंग ये बताए गए हैं, दीज आर 5 वेज टू कल्टीवेट कीर्तन। कीर्तन को कल्टीवेट करने की जरूरत पड़ती है। तो कीर्तन में पहला उन्होंने भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन पहला अंग है कीर्तन कल्टीवेट करना। एक्चुअली अध्ययन नहीं है ये उच्चारण है, रिसाइटिंग, बहुत स्पेसिफिकली बोला है, रिसाइटिंग स्क्रिप्चर्स, इट इज नॉट स्टडिंग स्क्रिप्चर्स, रिसाइटिंग, उच्चारण करना, शास्त्र का उच्चारण करना, नहीं तो उच्चारण होता नहीं है। बहुत जरूरी है ऐसे शास्त्र को, इसलिए सुबह जैसे चैतन्य शिक्षा में उच्चारण करवाई जाती है, तो उच्चारण करवाई जाती है, उच्चारण करना, तभी जाके चीजें ठीक होंगी। फिर दूसरा ये कीर्तन का फैसिलिटेट करने के लिए, दूसरा भगवान के नाम और उनके गुणों का कीर्तन करना, उनका गुणगान करना, भगवान के नाम का उनके गुणों का गुणगान करना। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, भगवान के गुणों का गुणगान करना। भगवान के गुण कितने होते हैं, कहां से पता चलेगा भगवान के गुण? सारी किताबों में बिल्कुल साफ साफ है, नेटर डिवोशन खोल सकते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, भगवान के 64 गुण बताए गए उसमें, वहां से वो है गुणों का गुणगान करना। गुणों का गुणगान करने का मतलब भेड़ गाना नहीं होता, दैट इज गुणों का गुणगान, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिकली गुणों का गुणगान करना। तीसरा ऐसे यहां पे प्रार्थनाएं करना, प्रार्थनाएं करना, इससे वंदनम, एक्चुअली वंदनम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कीर्तन में, 5-7 में, इस पर वंदनम के पार्ट्स जो है एडेड होता है, तो भक्तिनाथ ठाकुर ऐसा बता रहे हैं। और विनम्र निवेदन करना भगवान से, विनीत भाव से निवेदन करना चीजें, प्रार्थना करना, निवेदन करना थोड़ा अलग अलग चीजें। निवेदन का मतलब डायरेक्टली भगवान से मांग रहे हैं कुछ चीज, वंदना करने का मतलब है कि आप भगवान से सिर्फ मांग नहीं रहे, भगवान को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम लोग यूजुअली प्रार्थना का ही मतलब समझते हैं, अपनी डिमांड्स पूरी कराना, पर प्रार्थना के और अंग, ससुरूप महाराज जी की जो है एक बुक ही है वंदनम नाम से, तो उसमें जो उन्होंने अंग बताए वंदनम के, कि प्रार्थना करने सबसे पहले भगवान का गुणगान करना, उसके बाद जो है भगवान का धन्यवाद देना, तो ये सारे, फिर उसके बाद जो है अपनी कोई डिमांड रखना ऐसे, तो ये निवेदन, विनम्र निवेदन करना और जप करना, ये सबसे मुख्य अंग बताए गए हैं कीर्तन को कल्टीवेट करने का। जप करना संख्या पूर्वक, कई बार भक्त लोग पूछते भी है कि कौन सी चीज ज्यादा पावरफुल है, कीर्तन करना मृदंग करताल के साथ ज्यादा पावरफुल है, जप करना ज्यादा पावरफुल है? कीर्तन करना तभी ज्यादा पावरफुल है जब आदमी जप करता हो, तो कीर्तन का बेस जो है उसका जप है, और उसका उसकी उसकी मिनिमम न्यूनतम संख्या जो है, चाहे वो 16 माला है, 25 माला है, 64 माला है, उसने जो भी बांध रखी है, अगर वो पूरी नहीं करता है तो उसके कीर्तन में कोई शक्ति नहीं होगी। खैर उसमें और किसी गवैये में, किसी भांड में जो है कोई ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा, सीधी बात है, वो जप नहीं करता है तो उसका कीर्तन जो है फिर यही होगा, जो मर्जी कर ले वो, उसके बाद जितने मर्जी लोग जोड़ ले, वो कभी नहीं जुड़ेगा भगवान से, तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक ये नहीं करेगा। फिर आगे स्मरण के भी ऐसे अंग, नाम स्मरण, नाम स्मरण का मतलब होता है तुलसी माला में गिन के जप करने को नाम स्मरण कहते हैं। अक्सर हो सकता है बताए, पता है हमको, पता है जब पता है, पता तब सकता है जब कोई भार पकड़ता है, उसमें स्मरण करना सिखाते हैं बस, तब सब भूल जाते हैं, इस कान के अंदर आते सब पता लग जाता है, बाहर कोई पकड़ देता है तब कोई जवाब नहीं होता, स्मरण क्या होता है? ये स्मरण होता है। गायत्री मंत्र का जो है उंगली में उंगली में गेंद के गायत्री मंत्र करना, इसको स्मरण कहते हैं। स्मरण को विष्णु स्मरण बताया गया, इसलिए विष्णु स्मरण बताया गया, लीला स्मरण नहीं बताया गया उसको। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण कीर्तनम लीला स्मरणम नहीं हो। पाद सेवनम कभी जैसे तो ये सारी चीजें कई बार होता है कि पाद सेवन कैसे करें भगवान का, पाद सेवन तो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी लक्ष्मी जी की, बस वही कर सकती हैं। पैर दबाने को पाद सेवन कहते हैं। जब कोई कोई आपको बोले कि आपको कोई बोले मेरी मालिश कर दो तो क्या करते हैं, पैर की मालिश करते हैं, सर की भी करते हैं, करते हैं ना सर की मालिश भी, तो उसको क्या कहेंगे फिर, उसको पाद संवारा नहीं कहा जाता। हाँ हाँ, पाद संप्रभु जी सेवा करते पाद से बैठे कहीं पे, अगर किसी को अगर बोला जाता कोई अतिथि आया बाहर से तो क्या बोला जाता, उसके पैर दबाओ, क्योंकि सर में दर्द हो रहा हो तो क्या करोगे, सर नहीं दबाओगे उसका, उसको क्या बोलेंगे, सर दबाना, उसको पैर दबाना ही बोलते, पाद संवारण ही बोलते। किसी के बोले शरीर की मालिश करना को भी पाद सेवन ही बोलते। जैसे पुजारी लोग जो है जैसे डीटीस का जो है मालिश करते हैं, पूरा ऑयल से मालिश कर, मसाज, ऑयल मसाज होता है अंदर, ये आप लोगों को देखने को नहीं मिलता, दरवाजा बंद होता है, तो क्या होता है उसको पाद सेवनम कहते हैं। उसके लिए कोई टर्म नहीं है, वो अर्चनम नहीं है, वो वंदनम भी नहीं है, और वो साक्ष्यम भी नहीं है कि यारी दोस्ती में जो है शरीर दबा दिया। कहीं कहीं ये सोच रहे हो यारी दोस्ती में सर दबा दिया भगवान का, पाद सेवनम होता है वो, एंड पाद सेवनम भगवान के मुख का दर्शन करना पाद सेवनम बताया गया है, भगवान के चरण के दर्शन करना नहीं, तो मुख के क्या करोगे, मुख के सामने क्या करेंगे, नकाब थोड़ी ओढ़ देंगे, प्यार का दर्शन करेंगे। भगवान के चरण दर्शन जब हम बोलते हैं, राधा रानी के चरण दर्शन हो रहे हैं, तो उस दिन क्या होता है, राधा रानी के मुख के दर्शन बंद हो जाते हैं, उस दिन भी होते हैं, तो भगवान के मुख के दर्शन करना भी पाद सेवनम बताया गया। बाकी उन्होंने ठाकुर बताने सर ये भगवान को छूना, यानी कि तभी जब कोई सेवा हो ऐसे ही छूते रहे, देखते देखे जरा नहीं है छूना, तो कई बार भक्त लोग बोलते हैं तो हम लोग तो अंदर छूने देते नहीं, अंदर जाने देते नहीं, तो कैसे छूए भगवान को, तो भगवान की जितनी फोटोग्राफ्स हैं जेब में रख सकते हैं, छूते रहिए सुबह शाम, छुआते रहिए सर, छुआ सकते हैं, दैट इज पाद सेवनम। प्रदक्षिणा करना, प्रदक्षिणा का मतलब मंदिर की प्रदक्षिणा भी और धाम की प्रदक्षिणा, गिरिराज की प्रदक्षिणा, सारी चीजें, हर प्रकार की प्रदक्षिणा, गरुड़ जी की प्रदक्षिणा, ये सारा पाद सेवनम बताया गया। मतलब अपने चरणों से भगवान के चरणों की सेवा करना। मेरे सिर्फ हाथ लगेंगे भगवान की सेवा में, पैर किसके सेवा में लगेंगे फिर, अगर पूरे बॉडी को शरीर भगवान की सेवा में लगाना है। कर्मणा वाचा मनसा, कर्म का मतलब क्या होता है, शरीर होता है, तो शरीर के कौन सा अंग नहीं लगेगा, सिर्फ हाथ लगेंगे और क्या नहीं लगेगा, सर भी लगेगा प्रणाम करते वक्त, पैर भी लगेंगे पाद सेवन करते वक्त, भगवान के पैरों को भी, अपने पैरों को भगवान के सेवा में लगाना। फिर गंगा स्नान करना, गंगा जाना, मंदिर आना, धाम विजिट करना, सारा पाद सेवनम के अंदर। कोई प्रोसेशन जा रहा हो, कोई जो है आपका वो जा रहा हो, जैसे रथ यात्रा निकलती है, यात्रा निकल रही है, तो उसमें शामिल होना पाद सेवनम। कब आप सवाल पूछते हैं पाद सेवनम कैसे करें, रथ यात्रा में आइए ना, ये 7 दिन तो होली नेम वीक आइए ना, इसमें आइए ना, पाद सेवनम है, पूरे साल में कभी कभी करने को मिलता है। तो ये तुलसी जी की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, पाद सेवनम बताया गया। भक्तों की सेवा को भक्ति का कौन सा अंग है, 9 में से, श्रवण भी नहीं है, कीर्तन भी नहीं है, स्मरण भी नहीं है, दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदन भी नहीं है, अर्चनम भी नहीं है, वंदनम भी, क्या है वो फिर, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, कौन सा अंग है भक्ति का, खत्म, इसी में खत्म, पाद सेवनम। कई बार भक्त पूछे क्या हम तो भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, अंग कौन सा भक्ति का, बस तो जब यही नहीं पता तो क्या सेवा करें, सारा सेंटिमेंटलिज्म, रिश्ती करेंगे उसकी नहीं करेंगे, यही होगा फिर, जब तक मन करेगा तब तक करेंगे, ये पास है हमने। अर्चनम जन्माष्टमी, साल में एक बार जन्माष्टमी आती है, राधाष्टमी आती है, खासतौर पर जन्माष्टमी गौर पूर्णिमा प्रभुपाद बता रहे हैं, और भक्ति रसामृत सिंधु में है, भक्ति के 64 अंगों में से एक अंग ये है जो कि साल में सिर्फ एक बार पालन कर सकते हैं, तो ये जन्माष्टमी अर्चना में, जन्माष्टमी में आना, इतनी भीड़ में, हाँ जी अर्चना में, इतनी भीड़ में कैसा अर्चना हो सकता है, हो सकता है, करना आना चाहिए। कार्तिक अभी आने वाला है, कार्तिक व्रत का पालन करना ये अर्चना में, दिया दिखाते थे शाम को भगवान को अर्चना में, एकादशी पालन करना हर 15 दिन में अर्चना में। एकादशी किसके अंदर आ जाएगा, एक होता है भक्त, एक होती है भक्ति और एक होता है तपस्या, अच्छा अलग होती है क्या, आपका व्रत अगर किसी किसी भक्ति के अंग के अंदर नहीं आ रहा क्या है? मनमानी है वो या क्या है, वो मनमानी है फिर भक्ति के नाम पर, तो ये व्रत इसके अंदर आते अर्चना के अंदर आते। स्नान करना सही है, सर्दी के मौसम में, जनवरी के मौसम में, भक्ति ने ठाकुर लिख रहे जनवरी के मौसम में भी स्नान करना, तो भगवान के भक्तों की की अर्चना करना, इसका क्या मतलब है, भगवान की भक्तों की अर्चना करना को अर्चना क्या है, मतलब क्या मतलब है? अभी यहां जो भक्त बैठे हैं कोई मान लो केशव में मुझे आरती दिखा दे तो क्या होगा, फिर अर्चना मानी जाएगी, हाँ वो भी अर्चना मानी जाएगी, परंतु ज्यादा स्टैंडर्ड अर्चना जो है ये जितने अंदर भक्त बैठे ना इसमें, इसको हम लोग गुरु परंपरा कहते हैं, उसकी अर्चना करना, इसलिए प्रभुपाद गुरु पूजा डेली होती है। वो क्या है प्रभुपाद की गुरु पूजा, क्या है गुरु, क्या है कौन सा अंग है भक्ति का, सुबह सुबह आरती दिखाने खड़े हो जाते हैं, वो क्या है, वो कौन सा अंग है, वो कीर्तन भी नहीं है, जप भी नहीं है, श्रावण भी नहीं है, प्रभुपाद बोल तो रहे नहीं है, क्या है वो फिर, साक्ष्यम भी नहीं है, ही है अर्चना में, उसी अर्चना में आएगा ये। वंदनम, वंदना के अंदर जो है प्रणाम करना, वंदना का अंग बताया गया, नमस्ते करना नहीं, नमस्ते करने को प्रणाम नहीं कहते, अक्सर जो नमस्ते कल्चर चला रहता है, इतने सीनियर वक्त भी आते कोई हमारे, ये क्या होता है, आप एयर इंडिया में नौकरी करते हैं क्या, ये नमस्ते करने को प्रणाम नहीं कहते, प्रणाम करना मतलब प्रणाम करना, और वंदना अदरवाइज पाठ सुनो कीर्तन में तो इंक्लूडेड है ही है। तो ये नवदा भक्ति के जैसे आचार्य हैं, जैसे हम लोग जानते हैं श्रवण के परिषद महाराज, कीर्तन के शुभदेव गोस्वामी, ऐसे करके अक्रूर जी वंदना के स्मरण के बाद प्रहलाद महाराज इत्यादि, उसी टाइप से भगवान के कई भक्त हैं ऐसे जिनको हम बहुत ऊंचा समझते हैं, वो ऊंचे इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान की प्राप्ति इन्हीं अंगों से की है। भगवान के 8 मुख्य रानियां हैं भगवान श्री कृष्ण के, उसमें से 6 जो हैं उन्होंने ऐसे साधना करके भगवान की प्राप्ति की है, 6 इनके पूर्व जन्म बताए गए हैं, इसका मतलब साधन सिद्ध हैं, मतलब साधन सिद्ध हैं। सत्या भगवान की एक जो रानी है, मतलब नग्नि जीती जो है, नग्नि जीत गए, वंदना वंदनम से प्राप्त किया भगवान को, भद्रा स्मरणम से प्राप्त किया उन्होंने भगवान को, मित्रविंदा भागवत श्रवण से प्राप्त किया उन्होंने भगवान को, कालिंदी वंदनम और अर्चनम दोनों से प्राप्त किया भगवान को, लक्ष्मण अर्चन से प्राप्त किया उन्होंने भगवान को, जाम्बवंती नवदा भक्ति से प्राप्त किया, अम्बरीश महाराज की तरह नौ के नौ लगाए। समय अधिक हो गया, अदरवाइज इनकी हम कथा भी सुना सकते थे सारे। सारे रानियों ने जो इस टाइप से भगवान की प्राप्ति की, इस जन्म में नहीं, तीन तीन चार चार जन्मों से। कोई कोई चंद्र की कन्या थी, कोई अग्नि की कन्या थी, कोई ब्राह्मण की कन्या थी, कोई किसी राजा की कन्या थी, ऐसे दो दो तीन तीन जन्मों में प्राप्त किए भगवान को। या तो आप बाहर के लोग ऐसे सोचते थे भगवान वो लोफर हो गए, कहीं जाके किसी लड़की के सामने जो है बस बस, क्योंकि भगवान को लार लप्पा करने उतरते हैं क्या? इतना घटिया अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों की। ऐसी रानी ब्याली, अरे 16,000 रानियां ब्याली, अरे ब्याली, अरे पापड़ बेले उन्होंने ब्याली। इनमें से चार तीन चार रानियों का तो बताया गया कि तिरुमल पर्वत जिसको हम वो जानते हैं बालाजी, वहां जा जाके तपस्या की, चढ़ चढ़ गए लड़कियों ने। तो ऐसा सोचते हैं ऐसी भगवान को शौक चढ़ा था ऐसे, और ये इन लड़कियों का भी कोई कैरेक्टर नहीं था, देख रहे एक शादी हो रखी, दो शादी हो रखी, मान नहीं रही तभी। अरे जन्मों जन्मों से किए इन लोगों ने तपस्या। जामवंती के लिए भगवान बताते हैं सबसे ज्यादा प्रिय है मेरी, जो नौ के नौ अंग उसने बहुत मेहनत की इन्होंने। सत्या के लिए सत्या ने भगवान से मांगा था कि जब भी भगवान ने बोला कि ठीक है आप मेरी रानी, भगवान ने बोला कि मैं आपसे जो है विवाह करना चाहती हूं, सत्या ने बोला भगवान से, अग्नि की कन्या थी पहले ही, तो और बोला कि ठीक है मिल जाएगा, मैं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में जब मैं अवतार लूंगा तब आप आना। तो मैं कहते नहीं, पर मेरे को मेरी एक शर्त है। तो क्या शर्त है? सबसे पहले मेरे से शादी करना। आप और सभी तो करोगे ही सही, मानने वाले तो नहीं, तो सबसे पहले आप मेरे से करना। ये कथाएं नहीं है, जब ये बोलते ना देखेंगे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? ये जो वंदनम करनी, ये कौन करेगा? देखिए श्लोक सुनते ना, कई बार स्कूलों में बचपन में प्रेयर में करना, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव च विद्याम द्विनम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। ये हरग्रेस सत्या माता जी का बोला हुआ श्लोक है, ये भगवान की एक रानी ने बोला, ये उनकी प्राप्ति के लिए। ये आर्य समाज का श्लोक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की परम पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति के लिए वंदना की गई है, और ये प्राप्ति की गई है, ये वंदना की गई है एक लड़की से जिसको अबला कहते हैं, घर छोड़ के वहां बैठी हुई थी पहाड़ के ऊपर, वहां जाके बोल रहा है बंदा कि तुम मेरे सबो, क्योंकि दिखाया है पहले तुम मेरे सबो, सब कुछ छोड़ के। ऐसे ही मित्रविंदा पहले मित्रा नाम था इनका, मित्रा नाम था, बाद में दो जन्म फिर मित्रविंदा। लक्ष्मण पहले सुलक्ष्मण नाम था, किसी ब्राह्मण की कन्या थी, फिर लगे बाप बेटी दोनों ने भक्ति की इकट्ठे। तो ये डिटेल्स है, सब गरुड़ पुराण में आती हैं चीजें। ऐसे कालिंदी देवी ने तपस्याएं की, सूर्य की पुत्री थी कालिंदी देवी। तो ये देवताओं की पुत्रियों ने, देवताओं की पुत्रियों ने तपस्याएं की है भगवान को प्राप्त करने। हम पता नहीं क्या समझते हैं अपने आपको, लंगूर के बराबर भी नहीं है हम लोग, बुरा मत मानिएगा, हो सकता बहुत एप्रोप्रिएट वर्ड ना लगे, उनके सामने हम लंगूर हैं, ये शास्त्र बताते हैं। देवताओं के सामने इंसान को वो ऐसे ही देखते हैं जैसे बंदर को हम देखते हैं, एग्जैक्ट शास्त्रिक स्टेटमेंट है। जैसे हमारे लिए बंदर की औकात है, उनके लिए हमारी औकात है, इसलिए पैर भी नहीं रखते जमीन पे, इस जमीन पे जहां पे हम चलते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? सर जमीन है हिंदुस्तान, सर जमीन, हमारे लिए सर की जमीन है ना ये, वो पैर भी नहीं रखते इस। ان لوگوں نے ایسے تپسیا کی، دو دو تین تین جنم تک تپسیاں کی ہیں.
پھر آگے
ایسی جامونتی نے تپسیا کی ہیں، جامونتی جیسے تین جنم ہوئے، ایک بار تپسیا کی اتنا پہنچی، پھر دوبارہ تپسیا اتنا پہنچی، تیسرا جنم، سٹیج بائی سٹیج نکالا ہے ان لوگوں نے. ان لوگوں نے دو دو تین تین جنم میں پراپت کیے ہیں ایسی بنا کسی محنت کے، تو صرف پرابھات کی وجہ سے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہم ایک جنم میں نکل جائیں. جیسے پرابھات بتا دیں، چینٹنگ 16 راؤنڈ، فالوئنگ 4 ریگولیٹری پرنسپلس، افراد نہ کریں، نکل جائیں گے ایک جنم میں، نہیں تو سمبھو نہیں ہے. تو یہ انہیں انگوں کا پالن کرنے سے ہوں گے، اور ایسے ہی ہوں گے. کالی دی نے تپسیا کی، یمنا جی جن کو ہم جانتے ہیں، کالی نے تپسیا کی، سوریہ پتری جب انہوں نے تپسیا کی، انہوں نے بولا صاف ایڈمٹ کیا انہوں نے تپسیا میں کہ میں پہلے پرساد پہلے میں کھاتی تھی تو بھوگ نہیں لگاتی تھی، تو میں شرمندہ ہوں اس کے لیے. یعنی کہ پورو کرموں کے لیے جو ہے پچھتانا چاہیے، بھکتی میں آ گئے، اب تو کوئی پورو کرم ہے ہی نہیں، کرم نہیں ہے، کون بھوگے گا اس کو؟ آپ کا پورو کرم کون بھوگے گا؟ ہماری دیکھا ہو گئی تو ہمارے گرو بھوگیں گے. اچھا، تو یہ سب عجیب عجیب دھارنائیں ہوتی ہیں. کرمانی نردھارتی کنتو جب بھکتی بھاجت، کرم نہیں جلتے جب تک بہت تیور بھکتی نہ ہو. اور کرم کو جلانے کا جو سب سے شیور شارٹ طریقہ ہوتا ہے وہ یہ انوشوچنا ہوتی ہے، پشچاتاپ کرنا کہ جو میں نے کرم پہلے کیے ہیں. اکثر دیکھا جاتا ہے جس کو ہم بھکتی میں انرتھ کہتے ہیں، وہ اکثر دیکھا جاتا ہے وہ ہماری کرم ہوتے ہیں جو واپس آتے ہیں، یعنی پرانی عادتیں دوبارہ واپس آتی ہیں. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے جن کرموں کو، جن جن کرموں کے لیے میں نے پشچاتاپ نہیں کیا، وہی وہی کرم اب بھکتی کے اندر آئیں گے اور راکشس کی طرح ڈوب لیں گے. وہی کرم اب بھکتی کے اندر اب آتے، اب اس کا جو ہے ننگا ناچ دیکھیں گے. اب کرم ہوتا کیا ہے بھکتی کے اندر اب پتا چلے گا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ وقت ملا تھا اس کا، اس کو اس کا پشچات آپ کرے کاٹنے کا وہ نہیں کیا آپ نے. اگر پرنٹ پر پشچات آپ کر کے اس کو نہیں کاٹے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وی آر اوکے ود اٹ، اس کا مطلب کرم ٹھیک تھا. ٹھیک تھا تو پھر آئے گا وہ دوبارہ واپس، ٹھیک تھا نا؟ ٹھیک ہے، پھر تبھی بھکتوں کے ٹوٹتے نیم، دیکشت براہمن دیکشت بھکتوں کے نیم اس لیے ٹوٹتے ہیں. پھر باہر کا کھانا یہ وہ، جب آدمی اس کون میں آتا سب چھوڑ دیتا ہے چار دن کے لیے. کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ تو تپسیا کے بل پہ چھوڑ دیتا ہے، تو کو چلائے رکھنے کے لیے تپسیا، یہ انوشوچنا، یہ ریپینٹنس چاہیے ہوتی ہے، ریگولر ریپینٹنس چاہیے ہوتی ہے کہ پچھلے میں نے پہلے ایسا کیا تھا، پہلے میں نے ایسا کیا تھا، پہلے میں نے ایسا کیا تھا، بھگوان مجھے معاف کرو. یہ جیسے ہی بند ہو جاتا ہے وہ چیزیں واپس آتی ہیں، وہ کرموں کا فل ہوتا ہے، بھکتی کے اندر ہی آتی ہیں. اب وہ کرموں کا فل جو ہے، اب اس کو پاپ نہیں کہتے، اب اس کو اپرادھ کہتے. تو جی ہم بھکتی کر رہے ہیں، اچھائیں کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ اس لیے نہیں ختم ہو رہی کیونکہ ہم نے اس کو ٹھپا لگا کے رکھا ہوا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک کیا تھا کرم پہلے، ٹھیک کیا تھا بالکل، ماسک کہتے تھے ٹھیک تھا بالکل، کیا دقت ہے بھائی؟ غلط نہیں کہہ رہے تو اس کا مطلب ٹھیک ہی ہے نا، بیچ کا کچھ تیسرا راستہ نہیں ہوتا کوئی. اگر آپ آگے نہیں بول رہے کہ میں بھائی پہلے کھاتا تھا ایسا، یا ایسا کرتا تھا، یا ایسے الٹے سیدھے کام کرتا تھا، گبن کرتا تھا، رشوت کھاتا تھا، لاٹری کھیلتا تھا، جوا سٹا سب کچھ تھا میرا پہلے، مجھے معاف کرو، یہ آپ نہیں بول رہے. چھوڑ دیا میں نے، معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑ دیا میں نے. ارے چھوڑ دیا تو پکڑ ملے گی ویسے ہی آ کے، اب پکڑتی ہے بھکتی میں آ کے، پھر بعد میں اب اپرادھ بنتے ہیں ساری چیزیں. تو طریقہ ہوتا ہے. تو یہ ایسے سادھنا میں چیزیں آتی، تپسیا ورت کا مطلب یہ چیزیں ہوتی، تب جا کے جو ہے ہم امید کر سکتے ہیں یہ سادھنا اپنا فل دے گا. سادھنا اس لیے فل نہیں دیتے، کافی سمے ہو چکا ہے. विराम देंगे हम, और कहीं कोई किसी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं, समय अधिक हो चुका है। सारा हार्मोनाइज प्रभु जी का प्रश्न है कि प्रभु जी का प्रश्न ये है कि अभी यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज कि डिवोट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑल द लिम्स ऑफ भक्ति, यानी कि एक भक्त से अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि भक्ति के सारे अंगों का पालन करें। तो शीघ्रतम लोगों का प्रश्न है, पर हम ये भी देखते हैं कि भक्त अपना रुझान होता है, किसी को रीडिंग ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को माला ज्यादा अच्छी लगती है, कीर्तन करना ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ हो सकता है ऐसे। और प्रभुपाद एक और जगह पर ऐसा भी बता रहे हैं कि क्या हो हाँ कि श्रवण जो है वो सबसे शक्तिशाली अंग है भक्ति का। तो इसमें कोई विरोधाभास तो है नहीं, इसमें श्रवण सबसे ज्यादा अंग आपका पावरफुल है, आपको कुछ अच्छा एक अच्छा लगता है और आपसे सब कुछ करने की उम्मीद की जा रही है, बस ठीक है। तो वहां पे ये थोड़ी बताया गया सब कुछ उतनी उतनी मात्रा में करने की उम्मीद की जा रही है और सब कुछ उतना ही इंपॉर्टेंट, आप इतना इंपॉर्टेंस दोगे, आपको सब कुछ करो, आपका टेस्ट अपनी जगह। वो आप करोगे ज्यादा, अगर आपको जो चीज ज्यादा पसंद है तो आप करोगे ही, वो चीज ज्यादा तो करोगे ही, अच्छा है ना। जो चीज पसंद है कम से कम उसको तो ज्यादा करो, तो कुछ भी नहीं करो वैसे वैसे ही कुछ नहीं करते हैं, चलो कुछ एक चीज तो ज्यादा कर रहे हो। यहां बता तो रहे, साथ में ये भी तो बता रहे कि एक अंग से भी बंदा निकलता है, किंतु यदि इनमें से एक भी विधि पूरी हो ले तो उसे तब भी सर्वोच्च प्रद परमंश मिल सकता है, तो विरोधाभास तो है ही नहीं कहीं जी।
सेवा करना होता है और जप करना होता है, ये सब एक ही समान होता है
परमहंस अवस्था में,
परमहंस अवस्था में एक समान होता है। तो हमारे लिए तो फिर अभी जो करंट में है, जैसे जीव को
अच्छा सेवा करना जप करना नहीं नहीं वो अलग है, स्मरण और
जैसे जीव को स्वामी जी बताते हैं कि जो हमारा जो जप करना है या ये महत्वपूर्ण है, बाकी सब इसको सपोर्ट करते हैं
जी।
तो अभी जो है अगर हम जब पर अलग से अगर फोकस नहीं करेंगे, अगर इसको और सेवाओं के समान ही मान लेंगे तो फिर इस पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे।
बात सच है आपका, वहाँ उस संदर्भ में आपकी बात सच है, पर यहाँ इस संदर्भ में बात नहीं बताई गई, यहाँ इस संदर्भ में बात बताई गई है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जब को और सेवा को अलग अलग ना देखें, इस संदर्भ में बताया जा रहा है। क्योंकि जब करना भी सेवा है, अगर जब करना सेवा नहीं तो क्या है फिर, वो जब बेमायने हो जाएगा ना फिर, वो धर्म है। धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब भाई वर्णाश्रम का मतलब ही होता है कि आपको योर ड्यूटीज, ड्यूटी का मतलब कम से कम ड्यूटी तो हो, सेवा ना हो, चलो करते हुए समझ से कर लो। तो ये
निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि जो जब करना है वो हमारी मूल सेवा है, बाकी सेवाएं इसके ऊपर निर्भर करती है।
हाँ ये तो हमने बताई ना, भक्तिवन ठाकुर बता तो रहे हैं इसमें, जो जब बता रहे हैं ना, ये जब नहीं है तो आपका कीर्तन होगा ही नहीं, जितना मर्जी आप बजाते रहो।
और एक आपने नाम स्मरण बताया था, नाम स्मरण का क्या अर्थ होता है?
चैंटिंग ऑन तुलसी बीट्स, एग्जैक्टली ये डेफिनेशन है।
जैसे अभी साधक की अवस्था में है तो
श्रवण के गिन के तुलसी माला में जप करने को नाम स्मरण कहते हैं, डेफिनेशन है ये, नाम स्मरण की डेफिनेशन ही है कि गिन के तुलसी माला में जप करने को नाम स्मरण कहा जाता है, उसमें आप स्मरण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग, ऐसे नाम स्मरण कहा जाता है। एक्चुअली हमारे यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग स्मरण करने का क्या मतलब है, स्मरण करने का मतलब है जब आपका हाथ पैर ठंडे पड़ जाए और दिमाग चल रहा हो घोड़े की स्पीड से, उसे स्मरण कहते हैं, उसे स्मरण नहीं कहते, उसे स्पेकुलेशन कहते हैं, कपोल कल्पना कहते हैं। स्मरण कुछ और चीज होती है, स्मरण के लिए पहले मरण होता है, मरण का मतलब होता है मेटीरियल एक्टिविटीज मस्ट सीज, तो बिल्कुल अलग चीज होती है स्मरण करने, ये डायरेक्ट ये स्मरण पॉसिबल है, इसलिए प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं ये स्मरण। कई बार कई लोगों को बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, हम स्मरण वरण नहीं, इसको हमें स्मरण नहीं सिखाते, अरे रोज कराते सुबह 4:30 बजे, घर पे सो रहे होते उस टाइम पे।
और जैसे आपने भगवान श्री कृष्ण की रानी उनके कईयों के एग्जांपल लिए कि एक एक प्रोसेस को फॉलो किया, या शुभदेव को स्वामी ने प्रोसेस को फॉलो किया, तो जैसे हम अपनी वर्तमान अवस्था में, तो ये आचार्य हमें मतलब क्या सिखाना चाहते हैं कि हम एक प्रोसेस को हम कैसे फॉलो करें, हम तो सारे फॉलो करने का प्रयास करें।
देखिए एक प्रोसेस को फॉलो करने का मतलब एक ही प्रोसेस को फॉलो किया, एक अंग मुख्य था उनका, हाँ समझ रहे हैं। अगर कोई वंदना कर रहा है तो कैसे वंदना कर लेगा, उसको कुछ पता ही नहीं, कुछ सुना तो होगा ना कभी कुछ उसने, हाँ समझ रहे। तो ऐसा नहीं है, आइसोलेशन में नहीं देखते, पर फिर भी कहने का मतलब है कि एक अंग को जो है उन्होंने स्पेसिफिकली फॉलो किया, एक को पकड़ लिया, जो आप पूछ रहे हो वही चीज।
तो निश्चित रूप से अगर किसी हम एक अंग को पकड़ना चाहते हो तो समय बीतने के साथ साथ हमें उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी।
हाँ, बढ़ी जाएगी, मना थोड़ी है उसमें बढ़ाने में, तो आपको रोकता थोड़ी है कि अगर आप बोलो कि आप 5 सवर्ण बढ़ाना चाहते हो, मान लो कि आप जो है आप हर महीने, मान लो आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर आप हर दिन जो है गोवर्धन परिक्रमा करना चाहते हो, करो आप 5 सवर्ण हमें बढ़ाओ, कितने लोग बढ़ाना चाहते हैं। हाँ समझते, हर कोई सीधा डीटी ऑल्टर में जाकर जो भगवान के सीधा भगवान के पैर से लिपटने के चक्कर में। हाँ, पास उनको चार बताए तो चीज पैसे बढ़ाओ, आप बढ़ाओ, देखते कितना बढ़ाते। हाँ समझ जी जी, सेम चीज, उसी को नाम स्मरण कहते हैं, चैंटिंग क्लब हो रहा है ना, क्लब हो रही है चीजें, दोनों चीजें क्लब हो रही है, इसलिए तो यहां बता रहे हैं ना परम अवस्था में क्या है, इसलिए तो स्टेटमेंट दी है। देखिए ना, श्रवण करना कीर्तन के ही समान है और स्मरण करना कीर्तन श्रवण के ही तुल्य, इसलिए बता रहे हैं। एक्टिव प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव मतलब आप पहले से तैयार हैं, आपके पास क्वेश्चन है, चीजें एक्टिव इनकम सुनिए, नोट्स तो बनाइए, ये चीजें। अरे भैया तब नोट्स बना सकते थे लोग जब कॉपी किताबें नहीं होती थी, बताओ पेन नहीं होते थे, जंगल में आदमी बैठा हुआ है यमुना की मिट्टी से, काले पानी से, एक लकड़ी के स्टाइलस से, ताल के पत्ते, उसको ताल के पत्ते पता है ऐसे नहीं मार्केट में मिलते हैं, उसको उतारने पड़ते हैं, सुखाने पड़ते हैं, काटने पड़ते हैं, तब जाके वो लिखने लायक बनता है। उसमें बैठ के आदमी नोट्स बना सकता है, उसकी इतनी ललक है, और यहां पता नहीं घर में डायरियां बनी होंगी, न्यू ईयर में डायरियां आ रही हैं, किसकी सारी डायरियां थी उस टाइम पे, हम तो भक्तों में देखते हैं खास खास, इतनी दिक्कत हो जाती है, रोजी हमें डायरी नहीं मिली, इसी बात से खफा है। आप खफा खफा क्यों रहते हैं, इसलिए रहते हैं न्यू ईयर की डायरी नहीं मिली, वो न्यू ही पड़ी है उसके बाद 3 साल हो गए, 3 साल पहले मिली थी, उनसे बुलाइए। अच्छा बताना, 5 पिछले साल के हिस्ट्री के रिकॉर्ड, पिछले राधिका रमन टेम्पल में जो है लास्ट 8 साल की डायरी सब है उसके पास, 2004 2005 ये 2006 2007 8 9 10 11 13 की भी है। खाली है, हंसना नहीं, रोना आना चाहिए, अपने घरों में जाके देखे डायरी मिली, प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रभु जी आए, कैलेंडर दी, डायरी दी, फिर भी मेरी एकादशी टूट जाती है कैलेंडर होने के बावजूद, और डायरी है तभी खाली पड़ी रहती है, क्या है मतलब, कौन से जगत में रहते हैं, बिल्कुल भोक्ता मेंटेलिटी है, सब मिलना चाहिए मेरे को सब, बस मंदिर से डायरी भी मिले, कार्ड भी मिले, जन्माष्टमी में कार्ड नहीं आया तो मैं मंदिर नहीं आया, कमाल होगी मंदिर, हमारा ध्यान नहीं रखते जी, कार्ड नहीं भेजते, एसएमएस नहीं आते हमको मंदिर से, तो ब्रह्मा जी को एसएमएस आए थे क्या, अपनी नालायकी जो है ना वो, ये नहीं कि हमारे अंदर लियाकत नहीं है किसी चीज की, हम ये नहीं आते, हम वो नहीं आते, कंप्लेन नहीं, अरे प्रोएक्टिव होनी चाहिए ना, प्रोएक्टिव होना चाहिए, ये चीजें इसलिए एक्टिव हियरिंग के बाद आती है सब चीजें, ठीक है। हाँ जी सचिन भाई, बहुत टाइम हो गया, हम क्लास ओवर हो चुके हैं, जो भी जाना चाहो जा सकते हैं प्लीज, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका
है। अपने स्टार्टिंग में बताया था कि साधक की जो तीव्रता है, साधक की तीव्रता स्टार्टिंग में
जी 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 लिखा है ना, एज इफ ही वेर एन एस्पायरिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट रादर देन ए परमहंस, कि उसकी माला की जब की तीव्रता इस टाइप की होनी चाहिए, महामंत्र का कीर्तन करने में उसकी रुचि इतनी तीव्र थी मानो परमंस ना होकर वो महत्वाकांक्षी आध्यात्मवादी हो, बाबा बताने इतनी तीव्रता होनी चाहिए, यानी कि साधक की तीव्रता जो है और ज्यादा होनी चाहिए, इस लिहाज से कि उसको अभी नहीं मिली सिद्धि, बहुत तीव्र होनी चाहिए, तीव्र है ना भक्ति योग्य ना जी। हाँ ये तो बढ़ता रहेगा, बात सच है, पर फिर भी कह रहे हैं, यानी कि इसके कहने का भाव क्या है कि अपने जी जान लगा दे 100%, कम से कम 16 माला तो हो पहले, वो लटक रही है 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, ओहो हो, चलो हुई नहीं आज खत्म पहले ये चीज सबसे पहले चीज देखी जाए, माला तो होती नहीं। ठीक है, नहीं तो नाम समझे भगवान के मुख्य दर्शन। हाँ, पांच श्रम के अंदर बताया जा रहा
है विशेष रूप से, क्या दर्शन के लिए हम विशेष रूप से ही करते हैं कि
अब डिटेल्स हैं उसकी, उसकी, उसकी डिटेल्स हैं, उसकी डिटेल्स हैं, उसमें तो आप डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि माथे का दर्शन, भावों का दर्शन, तो ये डिटेल्स हैं, ये तो ग्रंथों में जो है आपको मिलेगा, बुक्स पास से नाम से बुक भी है तो उसमें आपको मिलेगा डिटेल्स, तो हर चीज का जो है दर्शन का जो है एक एक लाभ है, भागवतम में भी है कुछ हद तक
डिटेल्स में देखे। हाँ, तो पूरे शरीर की डिटेल्स है।
हाँ, खास तौर पर फेस बताया गया, खास तौर पर फेस, ऐसा नहीं इसके मतलब बॉडी के दर्शन नहीं करने, जैसे शरीर पे जो है दर्शन चले जाए आंखें बंद कर लेनी, ऐसा नहीं मतलब, मुख्य दर्शन पांच चरण के रूप में बताया गया, मतलब आप इसका एक लॉजिकल रीजन जो है समझ सकते हैं कि आप किसी की सेवा करेंगे तो उसके मुख का दर्शन करेंगे, इसमें जैसे हम कहते हैं ना तो आपका मुंह देख के मैंने ये कर दिया, काम कहने का मतलब यही है, नेचुरल बात है ना, तो कॉमन सेंस है, कोई चीजें केवल लॉजिक से भी समझी जा सकती है, तो तभी आप करेंगे, चलो आपका मुंह देख के कर दिया मैंने कुछ भी मुंह।
और ये जन्माष्टमी का मतलब क्या था, व्रत है इसका मतलब,
जन्माष्टमी जो है ये वो अर्चनम,
जन्माष्टमी मतलब क्या है, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी मतलब क्या हुआ,
जन्माष्टमी फेस्टिवल जो है अर्चनम के अंदर आते हैं कि साल में एक बार जो है ये इसको अर्चनम माना जाता है, इसको व्रत भी कह सकते हैं पर इसको ज्यादा उसमें अर्चनम के अंदर डाला जाता है अर्चना, क्योंकि आप बेसिकली अर्चना का मतलब ये नहीं, जब आप तक आप बत्ती नहीं घुमाते तो अर्चना नहीं है, कभी जन्माष्टमी आगे लोग अभिषेक भी करते हैं, यूजुअली पब्लिक के लिए खोलते हैं हम लोग, इसलिए अभिषेक अर्चना
मेन की सेलिब्रेटिंग जन्माष्टमी,
सेलिब्रेटिंग जन्माष्टमी, जैसे वो भक्ति रसामृत संत में आ ही रहा है सेलिब्रेटिंग जन्माष्टमी एंड अदर फेस्टिवल्स अपियरेंस ऑफ द लॉर्ड, इसमें गौर पूर्णिमा प्रभात बता रहे साथ में, तो उस टाइप से क्योंकि उस टाइम रूप गोस्वामी ने गौर पूर्णिमा नहीं लिखी, बिकॉज उस टाइम तो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाने शुरू नहीं हुए थे, नरोत्तम दास ठाकुर के टाइम से शुरू हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ग्रंथ राशि चैतन्य चेतामृत की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, प्रस्थित भक्त वृंद की, दाई गोष्ठ प्रेमानंदे, हरि हरि।